अब ये हम इंशाल्लाह ताला अगली जो पांच आयात हैं उनमें हम देखेंगे एक डायलॉग है जो बनी इसराइल और मूसा अलैह सलाम के दरमियान हुआ है, जो बातचीत हुई है ना बनी इसराइल और मूसा अलैह सलाम के दरमियान, वो सारी इसमें अगली पांच आयात में। और हुआ क्या था एक्चुअली, एक वाकया हो गया था बनी इसराइल में। अच्छा, अब ये वाकया कब का है? अब ये तीनों वाकया डिफरेंट टाइम्स के हैं। पहला वाकया मैंने आपको कब का बताया, जब मूसा अलैहि सलाम तूर पे गए थे, अभी ये सहराय सीना में ही थे, ठीक है। अब ये वाला वाकया भी वहीं का कहीं का है, मैदाने ती में वो लोग घूम रहे थे, अभी उस वक्त का वाकया है या कुछ, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम इसमें अलाइव है। अच्छा, अब देखें मूसा अलैहि सलाम उस वक्त में क्या हुआ था कि एक आदमी का कत्ल हो गया और पता नहीं चल रहा था कि किसने कत्ल किया। जो थोड़ा मैं आपको पीछे उसका बता देती हूँ कि ये आदमी ना बहुत रिच था, बहुत अमीर था, और उसकी सिर्फ एक बेटी थी और एक भतीजा था उसका। भतीजे ने जब देखा कि ये तो मार ही नहीं रहा, तो उसने कहा, सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको कत्ल कर देता हूँ, इसको मार के इसकी बेटी से शादी मैं कर लेता हूँ, और कत्ल की जो तोहमत है वो दूसरों के ऊपर लगा देता हूँ। इससे ये होगा कि मुझे दियत भी मिल जाएगी, खून बहा भी मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, इसका माल का मालिक भी मैं बन जाऊंगा अपने चचा के माल का, और मेरे मुझे तब इसकी बेटी के साथ शादी भी हो जाएगी। सारा मतलब उसने अपना प्लान बनाया। अच्छा, प्लान करके उसने जब कत्ल कर दिया, तो अब तो उसके बाद बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि ये खड़ा हो गया कि जो है ना फलाने कत्ल किया, फलाने किया। अब वहां पे एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला से मूसा अलैहि सलाम दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उनको हुक्म देते हैं कि एक गाय को ज़िबा करो और उसका एक पीस लेके, और जो मुर्दा है ना, जो जिसको कत्ल किया गया, उसको लगा दिया जाए, वो जिंदा होगा और वो बताएगा कि मुझे किसने कत्ल किया। क्योंकि वहां पे तो झगड़ा था, कोई एविडेंस नहीं था, कोई पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ। अल्लाह ताला चाहता तो वैसे ही अल्लाह ताला बता सकता था कि किसने कत्ल किया, है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया एक गाय को ज़िबा करो और उसका पीस लगाओ। पहले मैं आपको सारी बात बता देती हूँ, फिर इंशाल्लाह वाकया आपको ना बहुत आसान होगा समझना। ये क्यों कहा गया, कुछ याद आ रहा है आपको? पहले किसी एक गाय के बच्चे की बात हुई थी, अजल, काफ की बात हुई थी ना, गाय के बच्चे की, जो इसको उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था और उसको पूजा करने शुरू हो गए थे। इससे आपको क्या पता चला था उन्होंने कुछ और क्यों नहीं बना लिया, क्योंकि इंसान की शक्ल क्यों नहीं बना ली, कोई और चीज क्यों नहीं बना ली, कोई सांप, कोई बंदर, कोई कोई और चीज क्यों नहीं बना, गाय क्यों बनाई थी? मैंने आपको बताया था कि मिस्र में जब ये रहते थे तो वहां पे गाय की पूजा की जाती थी। तो इनमें जैसे अब हमारे यहाँ भी ऐसा है कि हम मतलब गैर मुस्लिमों के साथ रहे हमारे मुल्क में, तो हमने कई हिंदुओं के कल्चर और चीजें हमने ले ली, इसी तरह इन्होंने उनसे ये गाय का जो ये मुकद्दस पन है ना, कि ये मुकद्दस होना उसका, ये इन्होंने वहां से लिया कि गाय तो बहुत होली चीज है, बहुत ये चीज है। तो इनके दिमाग में इतनी ये चीज बैठी हुई थी कि इन्होंने जब एक अपने लिए कोई बनानी चाहिए चीज, तो वो भी गाय का ही बच्चा बनाया। अल्लाह ताला ने सुबहान अल्लाह इनको यही हुक्म दिया कि गाय को जिबा करो, इसलिए ताकि ये जो तुम्हारे दिल में गाय की एक मोहब्बत और गाय का होली होना, मुकद्दस होना, ये निकाला जाए। समझ आई ना? और ये नहीं चाहते थे कि गाय को ये ज़िबा करें, कि जाहिर है मैंने आपको जैसे बताया कि इनके लिए तो एक बहुत मुकद्दस चीज थी। तो अब ये इतने हीले बहाने करने लगे, इतने इनको एक्सक्यूजेस, ये आप कैसे, इतने क्वेश्चंस, क्योंकि ये नहीं चाह रहे थे कि गाय हम ज़िबा करें। अब अल्लाह ताला ने इनके दिल से ये मोहब्बत निकालनी थी और इनका टेस्ट लेना था कि अब पता चलता है कि तुम में से कौन है जो वाकई एक अल्लाह ताला को मानने वाला है, और कौन है जो ये फिर भी उसके दिल में अभी तक गाय समाई हुई है। तो टेस्ट हो जाना था ना, जो नहीं ज़िबा कर सकता ज़ाहिर है उसके दिल में ये गाय की मोहब्बत है। तो ये बड़ी इनके लिए मुश्किल काम था। अच्छा, अब देखें यहां से हम आगे देखते हैं और साथ साथ फिर हम बात करेंगे। वَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا کہ تم ایک گائے ذبح کرو. پتہ چل جائے کہ اونٹ نہیں بکری نہیں گائے کو ہی ذبح کرو، ذرا تمہارا بھی ٹیسٹ ہو. لیکن کہا کس لیے تھا؟ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قاتل کا پتہ بتائیں گے. سمجھ آ رہی نا پیچھے بات کیا تھی؟ پالو، انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو موسیٰ؟ اے یہ کیا بات ہوئی بھائی، قتل کا پتہ کرانا ہے کہ قاتل کون ہے، تم ہمیں کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو، یہ کون سی بات ہے؟ تم ہم سے مذاق کرتے ہو، ٹھٹھا کرتے ہو ہم سے. دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی اتنے مقدس جانور کے ذبح کرنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ ہمیں گائے ذبح کرنے کو کہہ رہے ہو، تم ہم سے مسخرہ پن کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، یو آر جوکنگ اراؤنڈ. ٹھیک ہے، اچھا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نے آپ کو بتایا نا یہ ایک بات چیت ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں والی بات کروں. کس چیز کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاہلوں والی بات؟ انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کو فرمایا کہ جاہلوں والی بات ہے؟ یہ مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، دیکھیں یہ مذاق استہزاء یہ نبی کی شان نہیں ہوتی. ہاں ایک لائٹ سا مزاح، مزاح جس کو کہتے ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کرے میں جنت میں جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے ہی تو جنت میں نہیں جاتے، تو وہ رونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یعنی کہ تمہیں اللہ جوان کر کے لے کر جائے گا جنت میں، بوڑھے تھوڑی جائیں گے. تو یہ ایک مذاق ہو سکتا ہے، لیکن ایک مذاق جس کو مذاق وہ والا ہوتا ہے جیسے ہم نہیں کرتے آج کل، ہمارے بھی کچھ اس طرح کا ہی وہ ایک ٹیسٹ ہو گیا ہے، جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جس میں دوسرے کی عزتیں اچھالنا یا اخلاق سے گری ہوئی باتیں جس میں ہوتی ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں ٹھٹھا، مذاق، استہزاء. ایسے تو نبی نہیں کیا کرتے، ہمارے ہاں تو یہ ایک بس کامن سی چیز ہو گئی نا، ہمارے وہ یہ اسٹیج ڈراموں پہ دیکھ لیں یا اور اس میں دیکھ لیں کس طرح اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح ہماری مجلسوں میں دیکھ لیں کیا کہتے ہیں جب کسی ایک کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کسی ایک کو پکڑ کے اس کو خوب اس کو بے عزت کرتے ہیں مذاق ہی مذاق میں، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ پتہ ہوگا آپ کو، فلاں کا ریکارڈ لگاتے ہیں، چلو فلاں کا ہم نے بڑا ریکارڈ لگایا. پتہ یہ بات کیسی ہے؟ یہ جاہلوں والی بات ہے. کبھی بھی کوئی متقی انسان، دیکھیں پیغمبر کی بھی شان نہیں ہے، وہ بھی فرما رہے ہیں میں، اور جو بری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند باتیں ہیں ان سے تو وہ کتنی دور ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، ایسی چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. آپ نے یہ دعا یاد کر لینی ہے، بہت آسان ہے نا، اعوذ باللہ تو آپ کو پہلے ہی آتا ہے. ان اکون من الجاہلین، جب بھی آپ کا دل چاہے کہ آپ مطلب ایسے مذاق کریں یا ایسی کوئی بات کریں جو مطلب بہت ہی، کیونکہ جاہل صرف یہ نہیں ہے کہ جہل سے نکلا ہے نا یہ لفظ، جاہل اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکے، اپنے غصے کو نہ کنٹرول کر سکے، غصے میں آپے سے باہر ہو جائے، اتنا ایموشنل ہو جائے کہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، ایموشنز میں ہی وہ انسان کوئی کام کر جاتا ہے پھر اس کے بعد سوچتا ہے ہائے میں نے کیا کیا، تو اپنا ٹیمپر اتنا لوز کر دیتا ہے نا کہ اس بالکل ہی وہ اپنی آپ میں رہتا ہی نہیں ہے، تو اس کو بھی جاہل ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو جب لگے گا نا کہ میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، حد سے نکل رہی ہوں، غصہ نہیں کنٹرول کر پا رہی، تو آپ فوراً یہ دعا کریں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. کوئی آپ کو ایسا غصہ دلاتا ہے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بڑا سخت تھا، تو ان کے سامنے کوئی یہ بات کرے موسیٰ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، ٹھٹے کر رہے ہو ہم سے، اب کتنی ایک غصے والی بات ہے کہ وہ آ کے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ان اللہ یا امرکم، میں نہیں یہ کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ آگے سے کیا کریں تم مذاق کرتے ہو ہم سے، تو کتنی ایک یعنی ایسی بات ہے جس پہ وہ اپنا ٹیمپر لوز کر سکتے تھے، तो उन्होंने आगे से क्या फरमाया, अऊद बिल्ला ना कुना मिल जाहिर। तो इससे हमें यह पता चला कि हम इस चीज के लिए भी ये दुआ कर सकते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ही की पनाह मांगी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई जाहिल नहीं हूं, तुम होगे जाहिल, नहीं, बल्कि दुआ करते हैं। आप देखें एक पैगंबर का तरीका कैसा है, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी ऐसे अखलाक अता फरमा दे, ऐसे तरीके हमें भी सुझा दे कि हम जब हमें कोई ऐसे गुस्सा दिलाने वाली बात करे तो हम आगे से ये जवाब दें, आपे से बाहर खुद ना होके बैठ जाए। देखिए अभी एक ऐसी बात थी जिसके ऊपर बात कुछ हो रही थी और कहीं की कहीं पहुंच जाती, वो फौरन अल्लाह की पनाह में आ गए, क्योंकि शैतान ऐसी बातों से ही इंसान को बहका देता है ना, एक ने गुस्सा दिलाने वाली बात की, दूसरा उससे भी ज्यादा ऊपर की एक बात कर देता है। तो इसलिए इस दुआ को हमने इंशाअल्लाह ताला याद करना। अब क्या कहते हैं वो, कालू दुआ लाना रब्बा का, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो। क्या दुआ करो, अब पहले तो कहा था ना कि पानी के लिए दुआ करो, पानी हमें चाहिए, और ये कहा था कि मूसा अपने रब से कहो ना कि हमें, हमसे नहीं ये खाई जाती, बकली हवा किस्सा फूमी हवा दसी हवा बसली, हमसे नहीं ये खाया जाता, हमने कोई ऐसी चीजें जमीन से निकाल के दे, तो उस वक्त ये कहा था। अब क्या कह रहे हैं, युबैयिल्लना मा हिया, वो बयान करें ना, चाहे गाय करने को कहा तो कौन सी गाय, हमें क्या पता कौन सी है, अब गायें तो इतनी सारी हैं, लो तुम अपने रब से दुआ करो, पुकारो अपने रब को। अब आप ये देखें अगेन वही बात आ रही है कि वो ये नहीं कर रहे कि अल्लाह ताला से खुद मांगे, बल्कि क्या कर रहे हैं, मूसा तुम मांगो हमारे लिए, तुम दुआ करो हमारे लिए। क़ाला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु यकूलु, अब ये देखें इन्नहु की जमीर किस तरफ जा रही है, बेशक वो यानी अल्लाह ताला यकूलु वो फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम कहीं भी ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें ये कहता हूं ये करो। एक पैगंबर अल्लाह का ही पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, कितनी सारी हिकमत की बातें ना इससे निकलती हैं, एक एक बात से आप बहुत हिकमतें सीख सकते हैं। तो दूसरी आप ये बात देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम, ये भी रिवायात में आता है कि जब ये कोई बात कहते थे ना तो मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे तूर पे जाके अल्लाह ताला से बात फरमाते थे, और फिर उसके बाद नीचे आके फिर उनको बताते थे, तो एक पूरा दिन इसमें लग जाता था, एक पूरा दिन लग जाता था, और ये हर दफा कोई ऐसी बात करके भेज देते थे कि चलो सर से टली तो सही। अब एक ना बॉल दूसरे के कोर्ट में फेंक देने वाली बात होती है ना कि चलो हमने तो कह दिया, आप खुद ही जाके फाइंड आउट करते रहेंगे। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला फारिदुन वला बिकर, अच्छा तुम्हें यही चाहिए कि कैसी गाय होनी चाहिए, देखो ऐसी गाय हो ना बूढ़ी हो ना बहुत जवान हो, आवान उन बई नजाल, दरमियानी इसी उम्र की हो, फफालू मा तो मरून, अब इसमें बड़ी हिकमत है, तुम करो जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है, यानी फेल क्या होता है, जो इंसान बगैर सोचे समझे कोई काम करे, अमल जो होता है ना वो सोच समझ के करने वाले काम को कहते हैं, फेल और अमल में यही फर्क है, अमल कौन सा काम होता है, जो इंसान सोच समझ के करता है, कॉन्शियसली करता है, और फेल कौन सा होता है, बस ऐसे ही कर लिया, तो बस कर लो ना, जैसे इंसान कहता है ना बस कर गुजरो, अब सोचने की बात नहीं है, तो बस कर लो जो अल्लाह ने हुक्म दिया बस, और यानी सवाल ना करो, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि ये और सवाल करेंगे ना मुश्किल में पड़ेंगे, लेकिन वो कोई हटते थे, पालो दो अल्लाह ना रब्बा का युबैय्यिन लना मा लौन हुआ, लो अब ये तो पता चल गया क्या एज, कलर तो हमें पता ही नहीं चला, वो बयान करें ना हम कलर कैसा होना चाहिए उसका। अब देखें एक सवाल होता है कोई चीज सीखने के लिए, इल्म के लिए, और एक सवाल किस लिए होता है, हीले बहानों के लिए, हीला साजी के लिए। ऐसा ही है जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे को कहती हैं बेटा जरा मुझे पानी पिलाना, तो बच्चा कहता है अच्छा पानी आपको कैसा पिलाऊं, मतलब ठंडा पानी होना चाहिए या गर्म, हाँ कहते चलो ठंडा ले आओ, तो कैसे ग्लास में ले आऊं, कांच के ग्लास में लाऊं, स्टील के ग्लास में लाऊं, प्लास्टिक के ग्लास में लाऊं, कैसा ग्लास हो, आप कहती हैं चलो प्लास्टिक के ग्लास में ले आओ, अच्छा लंबा ग्लास हो छोटा ग्लास हो, अच्छा चलो लंबे ग्लास में ले आओ, अच्छा उसके ऊपर कोई फूल बूटे भी बने हो या फिर सादा ही ग्लास आपको चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप कि रहने ही दो तुम ये काम करने को, मुझे नहीं चाहिए तुमसे पानी, मैं खुद ही ले लूंगी। पता चल जाता ना कि ये बहाने कर रहा है ना करने के, जब इंसान ने अमल नहीं करना होता ना तो उसको ऐसे सवालात सूझते हैं। इसीलिए आपको पता है सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को जो जिन चीजों से नफरत है, नफरत के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला को जिन चीजों से नफरत है उनमें से एक है कसरत सवाल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना। वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाला क्या चाह रहा है, किसी तरह मुझे कोई रास्ता मिल जाए कि मैं बस बच जाऊं, करना ना पड़े। अब ये जो बच्चे की मिसाल मैंने आपको दिया, आप खुद ही इसे सोच लें कि उससे आप क्या सोचेंगी। आप ये सोचेंगी मेरा बच्चा मुझे बड़ा अच्छे तरीके से पानी पिलाना चाह रहा है, या ये सोचेंगी कि इसने काम नहीं करना, काम चोर है, ये बहाने ढूंढ रहा है निकलने के। यही इनका हाल था। अच्छा, हमें इसका कलर तो पता नहीं चला, जाओ मूसा जाके कलर पता करके आओ पहले। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिर गए। अब देखिए कैसे ये सता रहे हैं अपने नबी को। काला इन्नहु यकूलू, बेशक वो फरमाता है। कौन वो बताइए, अब आपको पता होना चाहिए। अल्लाह ताला। इन्नहा, हा की जमीर किस तरफ? गाय की तरफ। बेशक वो यानी गाय, बकरातुन एक गाय हो, सफरा उन जर्द रंग की हो, और जर्द भी ऐसी हो, फत उन लौनुहा तसुरुन नादिरीन, ऐसी कि जिसका रंग इतना खिला हुआ हो, इतना गहरा हो कि अच्छी लगे देखने वालों को, यानी वो ऐसी गाय हो, कोई आम जर्द रंग की नहीं, वो भी इतनी खूबसूरत हो कि जैसे जो देखे तो बस देख के उसका दिल खुश हो जाए, इतना चमकीला शोख रंग हो। अब कितना मुश्किल हो गया ये तो ढूंढना। अब पहले तो उनको कहा था गाय बस ज़िबा कर दो, कुछ तो नहीं कहा था ना, अब मुश्किल हुक्म हो गया क्योंकि अब ऐसी गाय कहीं से जाके ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, वो एजल जो था उसका कलर क्या था, पता है आपको कोई कलर? किससे बना हुआ था वो, किसी को अंदाजा है? गोल्ड का बना हुआ था, ठीक है, वो जो बछड़ा इन्होंने पूजा था। तो गोल्ड का कलर क्या होता है? जर्द रंग होता है ना, चमकीला सा होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उनको वही हुक्म दिया। अच्छा फिर तुम इतना सवाल करते हो ना, एग्जैक्ट वैसा जिसको, जो तुम्हारे जहन में इतना मुकद्दस है उसी को करके दिखाओ जेबा। हुक्म मुश्किल भी हो गया और इनका टेस्ट भी मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला ने इम्तिहान ले लिया। अच्छा कौला, अब वो फिर भी नहीं हटे। उदुराना रब्बा कर युबैन लना माहिया, अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए कैसी हो वो, मतलब अभी भी इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, वो जो है ना गाय वो तो हम में मुश्तबा हो गई, हम इतने कंफ्यूज हो गए हैं, अभी भी समझ नहीं आ रही है। बूढ़ी जवान तो ठीक है, ना बूढ़ी हो ना जवान हो, दरमियानी दरमियानी एज की हो, ठीक है वो भी मिल गई, लेकिन येलो कलर की और इस तरह की चमकीली हमें समझ नहीं आ रही, जरा और स्पेसिफिक हमें बताया जाए। अब शुबा भी किस लिए था, मानने की नीयत नहीं थी, चाहते थे कोई ऐसा जवाब मिल जाए गाय को ना जिबा करना पड़े। इसको कहते ना बाल की खाल उतारना, इतने सवाल पूछो कि दूसरा बेचारा कहे कि भाई इतना नहीं दो। आप जैसे कई लोग सवाल पूछते हैं ना, अल्लाह ताला माफ फरमाए और हिदायत दे, ऐसे सवाल पूछते हैं दूसरा कहेगा अच्छा फिर आप ऐसे कर लें, नहीं वो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि देखे ना वो, तो फिर उसके लिए भी ये मसला है, अच्छा चलें फिर आप इस तरह से कर लें। जिससे पूछ रहे हैं वो कोई ना कोई रास्ते बताएगा, नहीं वो भी नहीं हो सकता फिर क्योंकि उसके लिए फलाना प्रॉब्लम है, तो फिर आप ये तीसरा रास्ता देख लें, इस तरह से कर लें, नहीं नहीं ऐसे भी नहीं हो सकता, बस उसके लिए ये प्रॉब्लम है। तो वो जिससे आप पूछ रहे हैं वो और क्या करे फिर, अब चाहते हैं कि हम उसको ऐसी बातें कहें कि आखिरकार वो यही कह दे कि अच्छा चलें ठीक है फिर, आप अल्लाह ताला बेहतर जानता है, आपकी मजबूरी इतनी ज्यादा है तो फिर आप ना करें, अब चलो हम खुश हो जाते हैं, चलो जी अब हम लोगों को बताते फिरते। मैंने तो उनसे भी पूछा था, वो कह रही है बेशक आप ना करें, वो कह रही है आपके लिए नहीं है क्योंकि आपकी मजबूरी इतनी है, हमारा काम बन गया है ना, क्योंकि हमने तो इल्जाम दूसरों पे थोपना होता है, करना खुद नहीं होता, इसलिए हम इतनी फर्जी कहानियां बना बना के यहां से भी वो ये एक सलूशन बताएगा, हमने आगे एक और मसला खड़ा कर देना, फिर दूसरा सलूशन बताएगा, हमने उसके आगे भी कोई और मसला खड़ा कर देना, ताकि इन द एंड उससे ये बस कहलवा लें कि ना करें फिर आप ना, आपकी बस छुट्टी है, आप जैसे लोगों के लिए तो ये हुक्म है ही नहीं, तो हम खुश हो जाएं कि देखा अब अपने आप को मुतमईन हमने करना होता है ना, अपना जमीर मलामत कर रहा होता है कि क्यों नहीं कर रहे, तो अब मुतमईन कैसे करना है, अब इधर उधर से इस तरह की बातें पूछ पाछ के और उसके बाद अमल से पीछे रुके रहना। अब वो क्या कहते हैं, इंशाअल्लाह मुहतदून, हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत पा लेंगे। अब ये वाली वो वाली हिदायत नहीं है जो हमने हुदन लिल मुत्तकीन वाली पढ़ी थी, हिदायत पाने का मतलब ये राह पा लेना, यानी अब हमें रास्ता मिल जाएगा, यानी गाय तक हमारी रहनुमाई हो जाएगी, हमें अब पता चल जाएगा कि कौन सी गाय है। अब एक दफा हमें और जरा बता दें, जरा और स्पेसिफिक करके। अल्लाह, और हर दफा देखें यही कह रहे हैं, मूसा तू मांग तू मांग तू मांग। हमें अमल की बात इसमें क्या लगती है, हमें खुद मांगना है अपने लिए। अल्लाह ताला का दर हर एक के लिए खुला हुआ है, कोई ये ना कहे हम तो बड़े गुनाहगार हैं, फलां हमारे लिए मांग ले। क्यों, शैतान ने तो खुद मांगा था अपने लिए कि अल्लाह मुझे मोहलत दे। हैं, वो तो ऐसा रांदा है दरगाह लानत जदा होके भी खुद मांग रहा है। तो आप कहते हैं कि मैं गुनाहगार हूं और मैं नहीं मांग सकती। क्यों, किसने आपको कहा कि कोई गुनाह करके अल्लाह की तरफ नहीं आ सकता? ये शैतान अल्लाह ताला से दूर रखने के लिए इंसान को यह सुझाता है। नहीं, उसके दरवाजे हर एक के लिए खुले, नेक हो बद हो कोई भी हो, आ जाओ उसके दरवाजे पे और मांग लो उससे, क्योंकि उससे मांगना भी उसके साथ एक ताल्लुक है, उसके साथ एक रिलेशन है, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक बनाओ। इसीलिए मांगने को, दुआ करने को इबादत कहा गया है, ये भी इबादत है। तो ये इन्होंने डाल दिया, मूसा तू ही मांग, जैसे हम भी चले जाते हैं किसी के पास, आप हमारे लिए दुआ कर दें बस, आप हमारे लिए ये दुआ कर दें, आप वो दुआ कर दें, हमारा ये मसला। ठीक है, आप किसी को दुआ के लिए जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि दूसरे ही आपके लिए दुआ करें, आप खुद अपने लिए कभी करें ही नहीं। किसके पास टाइम है, हमने तो दूसरों को भी ये ठेका दे दिया कि वो ही दुआ कर लिया करें। कहीं जाके हम कोई चैरिटी दे देते हैं, फिर उनको कह देते हैं आप बस ये दुआ करा दें, कि हमारे पास कहाँ टाइम है दुआएं मांगने का। दुआ के लिए भी कोई ताल्लुक चाहिए, दुआ के लिए भी कोई टाइम चाहिए। तो ये उनका हाल था बनी इसराइल का। और देखें, अब इन्होंने इंशाल्लाह कहा तो अब उस तक पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बनी इसराइल अब भी अगर इंशाल्लाह ना कहते ना, तो क्यामत तक उनको ऐसी गाय नहीं मिलती। इसीलिए हमें कहा गया इंशाल्लाह कहो, ये ना कहो मैं ये काम कल करूंगी, ये कभी भी ना कहा करें। अब जो कुछ मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैं तो ये करूंगी करूंगी, नहीं ये कभी ना कहा करें। अब जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बाज लोग कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह रहम करे अगर चाहे कुछ भी हो गया तो पता नहीं है आपका क्या बनेगा, फिर आप किधर होंगी। ये कभी ना कहा करें चाहे कुछ भी हो जाए मैंने ये जरूर करना, नहीं कहें इंशाल्लाह मैं ये करूंगी अगर अल्लाह ने चाहा तो। चाहे कुछ भी, मैं तो पता नहीं क्या तबाही भी हो सकती है और पता नहीं हम जिंदा भी रहते या नहीं, तो चाहे कुछ भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है देने के लिए। हम तो सारी चीजों पे अल्लाह तेरे ऊपर ही डिपेंड करते हैं, या अल्लाह ताला तूने हमसे करवा लिया तो हम कर पाएंगे, तू तो तौफीक दे देना इंशाल्लाह हम करेंगे, हमने नियत कर ली। तो चाहे कुछ भी हो जाए तो इसका मतलब है तो मैंने अपने आप को इतना पावरफुल समझ लिया कि कोई दुनिया इधर की उधर हो जाए, तूफान आए जलजले आए, मैं मरूं जीऊं मेरे घर में कुछ भी हो जाए मैं ये सब करूंगी। कैसे आप कह सकते हैं ये बात? तो इसको अपनी जिंदगी से निकाल दें, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब से क्या कहना है इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं है कहीं फरमाया कि मैं तुम्हें ये इसका जवाब दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमें क्या पता चलता है सुन्नत से भी कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह कहना भूल गए थे, तो आपको पता है ना वही नहीं आई थी, फिर कितना अरसा नहीं आई थी। तो अगर पैगंबर की इस बात के ऊपर वही रुक गई थी, तो हम कैसे कह सकते हैं हम इंशाल्लाह के बगैर कोई काम कर सकते हैं। قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض, किसने कहा यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्ना हू बेशक वो, यानी कौन, अल्लाह ताला, यकूलू वो फरमाता है, इन्ना हा बेशक वो, अब हा की जमीर किस तरफ जा रही है, आपको काला में भी पता होना चाहिए, इन्ना हू में भी और इन्ना हा में भी किस किस तरफ ये जमीरें जा रही हैं। तो इन्ना हा बेशक वो, यानी वो बकरा जो है, बकरतुन ऐसी गाय होगी, ला दलूलुन जो नहीं होगी खिदमत ली गई, जिससे खिदमत नहीं ली गई होगी, मुती नहीं होगी, यानी मेहनत नहीं कराई गई होगी, तुसीरुल अर्दा ये वो हल चलाती होगी के जमीन में हल चलाती हो, और वला तस्किल हर्थ और ना पानी देती हो खेती को, यानी वो ऐसी गाय ना हो जो मेहनत कराई गई हो, जमीन में हल चलाती हो या पानी देती हो खेती को। देखा ना आपने बैल वगैरह, वो राठ में जोत के उनसे पानी भी निकालते हैं, वो ले जाते हैं और खेतियों में पानी भी देते हैं, और फिर बैल जुटे होते हैं, फिर वो हल भी चलाते हैं। अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन पहले जमाने के अंदर वो बैल से काम लेते थे ना, गायों से भी इसी तरह का काम लिया जाता था। तो वो वाली ना हो, बल्कि कैसी हो, मुसल्लमतुन, सही सलामत हो, लाशिया तफिया, और उसमें कोई निशान भी ना हो। कितनी स्पेसिफिक ये चीज हो गई, कोई दाग उसके अंदर ना हो, बिल्कुल सेम यानी कलर की हो। कालुल आना जिता बिल हक, अब कहने लगे अब तू लाया सही बात, अब तूने हकीकत सामने रखी है। फजबहूहा, अब लेकिन कितना मुश्किल हो गया था उस गाय को फाइंड आउट करना, इतना मुश्किल हो गया इनके लिए। कहा जाता है कि ये गाय उन्होंने बहुत ढूंढी, बहुत ढूंढी उन्होंने गाय, तो अब उनको मिली एक लड़के के पास, एक सिर्फ एक लड़के के पास ऐसी गाय थी, और वो लड़के की उसको विरासत में मिली थी उसके बाप से। ये बच्चा, ये लड़का जो था ना, यानी ये और उसकी माँ जो थे, उनकी मिल्कियत थी ये गाय। ये बच्चा जो था अपने माँ बाप का बड़ा फरमाबरदार था। तो कहा जाता है कि एक दफा इसका बाप सोया हुआ था, तो जो जिसमें पैसे वैसे होंगे या जो भी होगा वो उसके सरहाने में रखा हुआ था, और एक कोई आया ताजिर, और वो कोई कीमती हीरा बेचने आया था। कहने लगा मैं इसको बेचना चाहता हूँ। लड़के ने कहा मैं खरीदूंगा, कीमत 70,000 तय हुई। लड़के ने कहा जरा ठहरो, जब मेरे वालिद साहब उठ जाएंगे ना, तो मैं उनकी ये जो जो भी पेटी संदूकची थी उसमें से आपको कीमत दे दूंगा। उसने कहा अभी दो तो फिर मैं 10,000 कम कर देता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं अपने वालिद साहब को तो नहीं जगा सकता, तुम अगर ठहर जाओ तो मैं बजाय 70 के तुम्हें 80,000 दे दूंगा, लेकिन तुम्हें ठहरना पड़ेगा, मेरे वालिद साहब अभी सोए हुए हैं। उसने कहा नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, अगर तुम अब इस वक्त मुझे दे देते हो तो मैं इतने काम और कर देता हूँ, इतने काम और कर देता हूँ। और ये इधर से बढ़ाता जा रहा था, वो उधर से काम करता जा रहा था, हत्ता कि वो 30,000 पे आ गया। कहाँ 70,000 में बेच रहा था, कहता अभी दे दो मुझे तो मैं 30,000 में तुम्हें ये हीरा दे देता हूँ, लेकिन तुम इसी वक्त मुझे पेमेंट करो। लड़के ने कहा नहीं, मैं अपने वालिद साहब को नहीं जगा सकता, मैं तुम्हें 1,00,000 दे दूंगा, लेकिन मैं अपने, तुम ठहर जाओ अभी ना, मेरे वालिद साहब खुद उठेंगे तो मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा, वो कहने लगा जाओ, मैं तुमसे, तुम्हें बेचता ही नहीं हीरा। वो नाराज होके चला गया। अब अल्लाह ताला को देखें, सुभान अल्लाह, इस लड़के को भी नवाजना था। अल्लाह ताला इतने इसकी इस बात से खुश हुए कि इसके पास ये गाय थी, और बनी इसराइल जब यानी गाय को ढूंढने के लिए निकले तो सिवाय इसके जाहिर किसी और के पास नहीं थी। तो उन्होंने जाके कहा तुम एक के बदले दो गायें ले लो, लेकिन ये गाय हमें बेच दो। उसने कहा मैंने नहीं बेचनी। वो कहते तीन ले लो, चार ले लो, लेकिन वो नहीं राजी हुआ। 10 तक कहते, मगर वो फिर भी नहीं माना। आके भी मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि वो तो नहीं मान रहा। और इस उन्होंने कहा जाओ तुम उसको राजी करो, किसी तरह भी गाय खरीद के लाओ, गाय अब यही चाहिए। अब देखें कितना मुश्किल हो गया, क्योंकि स्पेसिफिक यही गाय चाहिए। आखिरकार वो लड़के ने कहा गाय के वजन के बराबर मुझे सोना दिया जाए, तब मैं जाके ये गाय बेचूंगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उसको उसके माँ बाप की जो खिदमत थी और उनका जो एहसास था, और क्योंकि ये जब उसके वालिद फौत हो गए तो ये बहुत मोहताज हो गए थे, और ये और इसकी माँ बहुत गुर्बत में और तंगी में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो अब इसकी गाय कितने पैसों की बिक गई, देखिए ना, अल्लाह ताला ने इस लड़के को भी नवाजना था और इनका भी इम्तिहान लेना था। तो देखे अल्लाह ताला ने एक, देखे काम एक होता है, लेकिन कितने, किसी की उसमें आजमाइश हो रही होती है, किसी को उसमें अल्लाह ताला ने फायदा पहुंचाना होता है, किसी का कोई और इम्तिहान लेना होता है। देखिए कितनी तरह की चीजें एक वाक्य से हो रही हैं। अच्छा, अब जो है उन्होंने ज़िबा किया, अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कादू यफालून, और वो करने वाले नहीं थे, अब मजबूर हो गए, करते क्या ना करते, कोई चारा इनके लिए रह नहीं गया था। अब इतनी स्पेसिफिक बात हो गई, अब किधर जाते, मरते क्या ना करते वाली बात है। अब ये गाय देखें इनके लिए एक इम्तिहान बन गई है। अब कितनी बड़ी कीमत इनको इसकी अदा करनी पड़ी, वही जो कोई भी एक गाय पकड़ के ये उसको जिबा कर सकते थे। अब इनके लिए कितने एक मुश्किल भी हो गया वही हुक्म पे अमल करना, और इनको इसके लिए कितना तरद्दुद भी करना पड़ा, कितनी मुश्किल उठानी पड़ी इसको पाने के लिए, इसको पर अमल करने के लिए। इससे क्या पता चलता है, ये जो कसरत सवाल है ना, सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल, ये इंसान के लिए अल्लाह ताला के अहकामात को मुश्किल बना देता है। बहुत ज्यादा सवालात करने से बचना चाहिए, ये एटिकेट सीखने चाहिए कि बस इधर की उधर लगा के, अच्छा अब एक जेन में आ गया बैठे बैठे, ऐसे क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, फलाना क्यों हुआ, भाई बैठे बैठे। एक तो सवाल इसलिए बहुत ज्यादा कसरत से नहीं करने चाहिए। देखिए इल्म के लिए सबर की जरूरत होती है, सबर। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, सबर के बगैर इल्म ही आता। अगर आप चाहेंगे कि आज एक दिन में मैं आपके दिमाग में सब इल्म उंडेल दूं, कोई कोई शरबत है जो सारा आपके दिमाग में डाल दूं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको सबर से चलते रहना पड़ेगा। हाँ आप अपने सवालात लिख लें, मैंने पिछले कोर्स में भी स्टूडेंट्स को यही कहा था, एक जगह पे लिख लें, इंशाअल्लाह ताला जब आपका कुरान पाक मुकम्मल होगा ना, तो आप देखेंगे आपके सारे सवालात के जवाब आपको मिल चुके होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई रह गया तो मुझे बताइएगा, लेकिन आपके सब सवालात के जवाब आपको पूरे पूरे आपको मिल चुके होंगे। तो इसके लिए सब्र की जरूरत है। अगर आप सब्र नहीं करते तो वो मसले यही होते हैं कि आज आपकी स्टेज वो नहीं है कि कई सवालात के जवाब आपको दे भी दिए जाएं तो आप समझ पाएं। जैसे एक नर्सरी का बच्चा पूछने लगे कोई इकोनॉमिक्स का सवाल, कोई फलसफे का सवाल, तो उसको बता भी दिया जाए जवाब, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए उसके लिए भी एक लेवल तक आना जरूरी है। तो एक तो ये रीजन होता है, दूसरी बात ये कि जितने इंसान के पास इल्म आता जाता है ना, जितना इल्म आता जाता है उसकी जुबान उतनी बंद हो जाती है। बहुत ज्यादा फिर बढ़ बढ़ के बातें और बहुत ऊट पटांग के इधर उधर के सवालात बंद हो जाते हैं। क्या सहाबा कराम देखें, बहुत कम सवाल करते थे, हत्ता कि ये होता था कि सहाबा फरमाते हैं हम इंतजार करते थे कि कोई बद्दू आए और कोई सवाल करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हम सुने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब देते, खुद नहीं सवाल करते थे। तीसरी बात ये कि सवाल भी इंसान के मेंटल लेवल का पता देता है, आप कितने पानी में ना वो पता चल जाता है कि आपके सवाल से। एक सवाल होते हैं मिच्योर सवाल, एक सवाल होते हैं जो समझदारों वाले, और एक ऐसे बेवकूफाना सवाल होते हैं कि इंसान का पता चल जाता है ये कितनी बेवकूफी की बात कर रहा है। तो सवाल सोच समझ के पूछे और इंतजार कीजिए, हो सकता है आपको कुरान ही वो सवाल का जवाब बता दे, और जब वो बताएगा तो तब आप इतने मिच्योर हो चुके होंगे इल्म में इतने पुख्ता हो चुके होंगे कि तब आपको समझ आएगी। ठीक है, तो इंतजार किया कीजिए। अब ये देखें, इन्होंने जब सवाल किया तो इनका सवाल तो बचने के लिए था ना, ये भी लोगों का रीजन होता है सवाल करने का। तो अल्लाह ताला का हुक्म अगर ये बिला चू चरा मान लेते तो इनको फायदा होता। इंसान का फर्ज क्या है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो उसमें उसको हिकमत नजर आए या ना आए, जरूरी नहीं है कि आपकी अकल में वो बात आ जाए, लेकिन हमारी तरफ से बंदगी यही है कि अल्लाह के हर हुक्म के सामने हम झुक जाएं और खुशी से उसको मान लें और अमल करने की फिक्र करें उस पे, ना कि ये अच्छा ऐसा क्यों, फिर वैसा क्यों, फिर ये क्यों, फिर वो क्यों, फिर मुझे तो इसकी हिकमत नहीं समझ आई, फिर मुझे तो समझ नहीं आता ऐसा क्यों अल्लाह ताला ने किया, वैसा क्यों किया। नहीं, ये फिक्र करो अमल इसमें कैसे करना है। अब देख लें उनका अमल की नहीं इतनी फिक्र थी कि हम गाय जिबा करें, भाई हम उसके अंदर जल्दी करें, अल्लाह ताला के हुक्म को हम डिले ना करें, हम फौरन जो अल्लाह ने हुक्म दिया वैसे कर गुजारें। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इसका कलर क्या, उसका क्या, उसका क्या, टिट बिट्स में जा रहे हैं, इतनी उसमें जा रहे हैं जिसका कोई बात की नहीं गई थी, उस डिटेल्स के अंदर जाने लगे। देखें एक दफा एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बारे में बताया और फरमाया हज फर्ज है। एक आदमी कहने लगा क्या हर साल फर्ज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर वो दूसरी तरफ से आके पूछने लगा क्या हर साल फर्ज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर तीसरी तरफ से आके कहने लगा क्या हर साल फर्ज है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा गुस्से से फरमाया कि अगर मैं तुम्हें ये कह देता हाँ हर साल फर्ज है तो हर साल फर्ज हो जाता, लेकिन जो इस्तेआत रखता हो वो जिंदगी में एक दफा भी कर लेता उसका फर्ज अदा हो जाता। तो अब क्या है, देखिए इस बार बार सवाल करने से अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये निकल जाता हाँ, तो हर मुसलमान पे हर साल फर्ज हो जाता, कितना मुश्किल हो जाता ये। तो इसलिए बहुत सारे सवालात इंसान को मुश्किल में डाल देते हैं, इसलिए बेहतर है कि इंसान अमल करने पे ज्यादा, हाँ अमल की उसके अंदर इंसान समझने के लिए किसी चीज को, किसी चीज का इल्म लेने के लिए, किसी चीज को बेहतर तौर पे उसको वो करने के लिए अपनी उसकी में कोई सवाल करे तो अलग बात है। लेकिन देखें ये लोग भी कह सकते थे हम तो और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं ना, हम करना चाहते हैं लेकिन बस वो हमें थोड़ी सी और स्पेसिफिकेशन चाहिए। इस किस्म की नियत के साथ सवालात करना कि किसी तरह हम बच जाएं इसको करने से, तो ये सख्त गुनाह की बात है और इसकी वजह से इंसान अपने लिए और मुश्किलात बढ़ाता जाता है। जैसे हमारे यहाँ बाज लोग सवाल करते हैं ये चीज़ हलाल है कि हराम है, अब ना वो हलाल के जुमरे में है ना वो हराम के जुमरे में है, उसका क्या जवाब दिया जाए। भाई हराम तो वही है जो अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। अब हम इंसान सोचे आसमान की तरफ देखना हलाल है कि हराम है, पत्ते तोड़ना हलाल है कि हराम है, टीवी देखना हलाल है कि हराम है, ये फैक्स करना हलाल है कि हराम है, आप हर चीज को हलाल हराम के जुमरे में क्यों ले आते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो ना हलाल ना हराम वाली बात में है ही नहीं, ना उसमें कोई गुनाह है ना उसमें कोई नेकी है, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं। हराम तो बहुत कम चीजें हैं, बाकी सब चीजें अल्लाह ताला ने तुम्हारे फायदे के लिए इस दुनिया में पैदा फरमाई कि तुम उनसे फायदा उठाओ। लेकिन हम हर चीज को इस ऐनक के साथ देखना चाहते हैं हलाल है या हराम है। अब अगर दूसरे ने कह दिया हराम है तो आप तो खुद ही मुश्किल में पड़ जाएंगे ना। अब फिर आप दूसरे से सुन लेते हैं अगर कोई बात कि नहीं ये गलत है, तो तब भी हमने करनी नहीं होती, बस ऐसे ही पूछना है, तब कौन सा रुक जाना होता है उससे। असल ना आपको कोई अमल आपने करना ही नहीं है, ना करने की नियत है, बस पूछेंगे अच्छा शादियों पर यह करना सही है कि गलत है, तो आपने क्या रुक जाना है। अगर वो बंदी कह देती है कि आप नहीं करेंगे तो क्या रुक जाएंगी, नहीं करना भी वही है हमने, फिर सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तो ये इनका तरीका था। और इस कत्ल तुम नफसन, और जब कत्ल किया तुमने एक जान को, फद्दारा तुम फीहा, तो तुम एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। अब ये क्या है, वही वाले वाक्य की बाद में उसकी डिटेल आ रही है कि वो जब एक जान को कत्ल किया गया था तो तुम एक दूसरे पे इल्जाम धरने लगे, उसने किया उसने किया, अब तुम्हें वो नहीं पसंद था तुमने किया होगा। वल्लाहु मुखरिजुम्मा कुंतुम तख्तुमून, और अल्लाह निकालने वाला था जो तुम छुपाते हो, अल्लाह ने जाहिर कर ही देना था जो तुम छुपाते। इसका मतलब है कि जाहिर है उनमें से कुछ को पता होगा कि कातिल कौन है, तो अल्लाह ताला ने तो निकाल बाहर करना था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह ने निकाल दिया, निकालने वाला था, इसम यहां पे आया क्यों, इसलिए कि अल्लाह निकालने वाला है हर उस चीज को जो तुम छुपाते हो। वो उन्होंने दिल के अंदर कोई और भी तो चीज छुपाई हुई थी इन यहूदे मदीना ने, एक और चीज की तरफ इशारा है, तुम्हें पता है कि ये सच्चे नबी हैं, तुमने इसको छुपाया हुआ है, अल्लाह ने वो भी निकाल देना है। वो कातिल का तो पता निकाल ही दिया अल्लाह ताला ने, उसको तो जाहिर कर ही दिया जो छुपाते थे वो लोग, बाकी चीजों को भी अल्लाह ताला बाहर निकाल देगा, जाहिर कर देगा। समझ आई, फकुल नद्रिबूहु बिबादिहा, बस कहा हमने मारो इसको साथ इस बाज के, इसके बाज के, इसके किसके बादिहा, इस गाय के बाज हिस्से के, यानी वो जो गोश्त का एक पीस है उससे मारो। अब जब मारा तो वो उठ के बैठ गया और उसने बता दिया कि इसने मुझे कत्ल किया। कदालिक युहयी अल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह ताला जिंदा करता है मुर्दों को। देख लें अगर अल्लाह ताला कातिल का पता वैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को बता देते, इतनी जो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी मुशक्कत फरमाई, इतना इनका वो इतना लंबा चौड़ा ये सारा करने की क्या जरूरत थी। देखें इसमें एक हिकमत ये भी थी, अल्लाह ने दिखाना था कि अल्लाह ताला मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा क्यामत के दिन। जो लोग इस पे यकीन नहीं करते तो अल्लाह ताला ने उनके सामने जिंदा करके दिखा दिया। और देखें ये जो वो कातिल था उसने तो सोचा कि अब मुझे तो मेरी तो किसी को पता ही नहीं चलनी है, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने ये किया, लेकिन देखो अल्लाह ताला ने जाहिर कर दिया, तो अल्लाह जाहिर करेगा। और इसमें हम सब सोचें कि मेरी हर हर बात अल्लाह ताला को तो मालूम है ना, सिर्फ कातिल का पता नहीं अल्लाह बताने वाला, बल्कि और जो जो चीज मैं छुपाती हूं, क्या क्या है जो मैंने छुपाया हुआ, क्या क्या है, मैं अंदर कुछ हूं, बाहर कुछ हूं, सबके सामने कुछ हूं, अकेले में कुछ हूं, कितना कुछ मैंने छुपाया हुआ। तो अल्लाह ताला मुखरिजु मा कुंतुम तक्तुमून, अल्लाह निकालने वाला है जो तुम छुपाते हो। इनके लिए तो कातिल को, मकतूल को जिंदा करके अल्लाह ने निकाल दिया और जाहिर कर दिया, हमारी भी जो राज हैं वो अल्लाह जाहिर कर सकता है। क्या मेरी हर बात ऐसी है कि किसी के सामने अगर खुल जाए तो मुझे शर्म नहीं आएगी? हमारा तो एक दिन भी खुल गया तो क्या होगा? हाँ, हम तो कमरे में बैठ के किसी की बात कर रहे हैं और वो दाखिल हो जाए तो हम कैसे हो जाते हैं ना। तो अल्लाह ताला हमारी पूरी जिंदगी के पोल खोल सकता है। और देखें फद्दारा तुम फी हा, वो तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते थे, हम भी तो कोई भी कसूर हो जाए हमारा दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि हमारे से इल्जाम कहीं धुल जाए, हमारा हमारे ऊपर ना बात आए दूसरे पे लगा दो। तो कितना मर्जी फद्दारा तुम करो, एक दूसरे पे इल्जाम धरो, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना। तो अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दों को जिंदा कर देता है, वह यूरी को मायाती है, और अल्लाह दिखाता है अपनी निशानियां। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात की है, उसने कहा वो फी कुल्ली शय इन लहू आया, हर एक चीज में उसकी निशानी है, हर एक चीज में, और अल्लाह दिखा देता है। देखें मुर्दा को जिंदा करके दिखा दिया, अल्लाह ने कातिल का पता बता दिया, अल्लाह ताला ने इन लोगों को आजमा के दिखा दिया कि ये कैसे हैं। लअल्लकुम तअक्लून, ताकि तुम अकल से काम लो, अकल करो, तुम समझो इस बात को। अल्लाह इसलिए दिखाता है। देखिए हमारे लिए कितनी सारी बातें इसमें समझने की ना, इस पूरे किस्से में, एक एक आयत के अंदर हमारे लिए निशानी है, एक एक आयत में हमारे लिए सबक है। अल्लाह ताला इन आयात से हमें सही तौर पे इनसे फ़ायदा उठाने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें हिकमतें अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके ज़रिए से हमें हमारे अमल को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अब इंशाल्लाह आपका होमवर्क है कि आप इसमें लिखेंगे मेरे लिए अमल की बातें, और ख़ुद से निकालें अपने लिए कि मेरे लिए क्या है, मैं इन आयात को देख के अपने लिए क्या अमल सीखती हूँ, क्या अमल करना चाहती हूँ, मैं कितने बहाने बनाती हूँ, मैं कितने सवालात करती हूँ जो बचने के लिए होते हैं अमल से, मैं हीले बहाने कितने करती हूँ, कोई अल्लाह का हुक्म मुझे नहीं पसंद होता तो मैं किस तरह से उसको तरोड़ मरोड़ के ऐसा करती हूँ कि ताकि वही चीज़ अल्लाह ताला को हुक्म भी बाकी रह जाए और उसके अंदर रूह भी ना रहे। ऊपर ऊपर से सारा मैं वही कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं, जैसे यहूद की औरतों ने क्या करा था, उनको जब कहा गया कि अपने सर के बालों को कवर करो, उन्होंने शेव करा लिया अपने सर, उन्होंने कहा तो बालों को कवर करने का था ना, हमारे बाल ही नहीं है, ऊपर विग लगा ली, चलो जी ये तो हमारे बाल नहीं है ना, ये तो कोई विग है, तो काम भी हो गया और हमारा भी काम बन गया, अल्लाह को भी खुश कर लिया। तो कहाँ कहाँ मैं ऐसे करती हूँ कि मैं हीले बहाने करके जो अपनी मर्जी के काम है वो अल्लाह के अहकामातों को तरोड़ के और फिर पूरे करने की कोशिश करती हूँ, और मैंने किताब के मकसद को कितना पूरा किया है। ये आयत नंबर 63-64 से आप देखें कि अल्लाह ताला ने किताब का क्या मकसद रखा और मैंने कैसे पूरा किया। हर सबक में से आप अमल की बातें निकालेंगे, ये कोई एक दफा का नहीं है, हमें हर सबक में से निकालनी है, वरना सिर्फ ये बनी इसराइल की बातें रह जाएंगी और मैं और आप तो इसे एग्जेम्प्टेड होके आराम करें घर में, हमारी तो कोई इससे ताल्लुक है नहीं, बनी इसराइल जाने और उनका अमल जाने, हमें क्या। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इसकी तिलावत सुने।
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك